Jaya Radha Madhava. Gopijana Vallabha Girivara Dhari, Gopijana Vallabha Girivara, Gopijana Vallabha Girivara Dhari, Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana, Yashoda Nandana, Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava
लक्षण यद जो अधिष्ठानम
पृष्ठभूमि यत् जहां से सृष्टां उत्पन्न इदं यह संसार प्रभो हे पिता यत् जिसमें संस्थां प्रतिष्ठिता यत् जो परम वश में यत् जो है च तथा तत् इसका तत्वां लक्षण वद कृपया वर्णन करे तत्वतः वास्तव में अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की इच्छा है। अनुवाद हे पिता आप इस व्यक्त जगत के वास्तविक लक्षणों का वर्णन करें इसका आधार क्या है ये किस तरह उत्पन्न हुआ ये किस तरह संस्थित है और ये सब किसके नियंत्रण में किया जा रहा है। तात्पर्य वास्तविक कारण तथा कार्य के आधार पर नारद मुनि द्वारा उठाए गए प्रश्न अत्यंत तर्क संगत है किंतु नास्तिक लोग स्वनिर्मित अनेक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं जिनमें कारण कार्य का लेश भी नहीं रहता। ये व्यक्त जगत तथा आत्मा अब भी इन ईश्वहीन नास्तिकों द्वारा प्रयोगात्मक ज्ञान के आधार पर अविवेचित है। यद्यपि उन्होंने अपने उर्वर मस्तिष्क द्वारा निर्मित अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं किंतु नारद मुनि ऐसे मानसिक चिंतन परक सिद्धांतों के विपरीत सृष्टि संबंधी सारे तथ्यों को जानने के इच्छुक थे उन सिद्धांतों के द्वारा नहीं। आत्मा तथा परमात्मा संबंधी दिव्य ज्ञान में जगत तथा इसकी सृष्टि की आधार भूमिका ज्ञान सम्मिलित है। व्यवहार जगत में किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को तीन बातें दिखती है जीव व्यक्त जगत तथा इनके ऊपर परम नियंत्रण। बुद्धिमान व्यक्ति देख सकता है कि न तो जीव न ही व्यवहार जगत संयोजन्य सृष्टिया है सृष्टि एवं इसके नियमन कार्य कारणों से इसके पीछे किसी बुद्धिमान मस्तिष्क की योजना कार्यशील प्रतीत होती है। शुद्ध जिज्ञासा द्वारा और किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता से जो उन्हें वास्तव में जानता हो परम कारण को खोजा जा सकता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविश्रम स्थापितम् येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरो श्रीयुत पदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आपका स्वागत है इस भागवतम क्लास में। तो हम श्रवण कर रहे हैं कि किस प्रकार से पिछले अध्याय में जो परीक्षित महाराज हैं उन्होंने प्रश्न पूछा था कि किस प्रकार से ये सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो ऐसे परीक्षित महाराज का ये जो प्रश्न है ये सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं बल्कि उसको जानना बड़े बड़े देवताओं के लिए भी अचिंत्य है, उनकी चिंता से परे है। अचिंत्य खलु ये भावा न तर्के न योजयेत। तो भगवान को जानना ये वास्तव में हमारे भौतिक बुद्धि से परे है। कोई व्यक्ति अपने तर्क बुद्धि आदि का आश्रय लेकर भी परम भगवान को थोड़ा भी समझ नहीं सकता। जो बड़े बड़े मुनिगण हैं, मुनि पुंगवानाम, वो भी अपने बुद्धि को लगाते हैं और नाना प्रकार से प्रयास करते हैं, फिर भी शास्त्र कहते हैं कि वो भगवान के जो नाखून हैं वहां तक भी पहुंच नहीं पाते, उसको भी जानने का सामर्थ्य उनके पास नहीं होता। तो ऐसी जो भगवत सृष्टि है, जो भगवान अपने शक्तियों के द्वारा जिसका निर्माण करते हैं, उसको जानने के लिए परीक्षित महाराज चाहते हैं। और परीक्षित महाराज ये जानने के लिए किसको अप्रोच करते हैं? शुकदेव गोस्वामी को। क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो हमें यदि भगवान को जानना है, भगवान को जानने का अर्थ है कि भगवान से संबंधित सारी चीजों को जानना, क्योंकि ये जो भगवत सृष्टि है, जो मटेरियल क्रिएशन है, ये भी भगवान का ही निर्माण किया हुआ जगत है। तो भगवान को जानना मीन्स भगवान से संबंधित वस्तुओं को भी जानना। इसलिए भगवान को तब कहा जा सकता है कि पूर्ण रूपे न समझना। तो इसलिए भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मैं दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः। जो मेरे जन्म कर्मों की दिव्यता को जानता है तत्व से, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वार्जुन, कि वो व्यक्ति पुनः इस जगत में जन्म नहीं ले सकता। तो भगवान को हम अपने बलबूते पर नहीं जान सकते, या भगवान को अपने प्रयासों से हम बांध नहीं सकते, आकृष्ट नहीं कर सकते। ऐसा जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि भगवान को देखने का प्रयास मत करो, ऐसा कार्य करो कि भगवान आपको देखे, भगवान आपके लिए प्रकट हो जाए। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान को जानना है तो व्यक्ति को तत्वविद, जो तत्व से भगवान के को समझता है, जानता है, उसका आश्रय लेना होगा। जैसे प्रभुपाद कहा करते थे कि ये जो भव सागर है, आपको सागर को पार करना है तो आपको बहुत बड़े नाव की आवश्यकता है, जो बहुत शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान है, जो आपको उस पार ले जा सकती है। तो उसी प्रकार से कोई व्यक्ति कहेगा कि नहीं, कुत्ता कुत्ते को भी तैरना आता है और कुत्ते की पूंछ पकड़ के मैं जाऊंगा तो पहुंच नहीं सकता, डूब जाएगा। तो उसी प्रकार से भगवान को भी जानना है तो कैसे जान सकते हैं? सरल उपाय है। भगवान को जानते कौन है? उनके भक्त है। भारत में तो ये समस्या है, उनसे भगवान की बातें करोगे तो कहते नहीं 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 हम भगवान को मानते हैं, हम भक्त है। वो कहते हम भगवान को मानते हैं। प्रभुपाद कहा करते थे कि जाओ और उनको पूछो क्या आप भगवान को जानते हो, तो सब कहते हम भगवान को नहीं जानते, भगवान के बारे में नहीं जानते। तो भगवान को जानने के लिए भगवान के भक्तों का आश्रय लेना पड़ेगा। तो जो परीक्षित महाराज हैं वो किसी और के पास नहीं गए भगवत तत्व को जानने के लिए। भगवत तत्व को जानने के लिए वो भगवान के जो महान भक्त हैं शुकदेव गोस्वामी, उनको उन्होंने अप्रोच किया। और इसलिए शुकदेव गोस्वामी को उन्होंने कहा कि मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं, आप मुझे बताइए कृष्ण के बारे में, मैं जानना चाहता हूं। तो वास्तव में परीक्षित महाराज के जीवन में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी। और हमारे पर्सनल जीवन में भी हम देखते हैं कोई समस्या आती है तो व्यक्ति पूर्ण रूपेण निर्बल हो जाता है, धाराशायी हो जाता है, अपने आप को संभाल नहीं पाता, टूट जाता है। तो ये जगत की जो समस्याएं हैं वो इतनी बड़ी नहीं है। इस जगत की जो भी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं वो तब हमें बहुत बड़ी लगती हैं जब हम कृष्ण को भूलते हैं। कृष्ण को भूलते ही जगत की जो समस्या है वो हमें बड़ी लगने लगती है। लेकिन कृष्ण का हम स्मरण आदि करते हैं, उनकी भगवत भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, तो ये जगत की समस्या भी हमें बहुत छोटी हो जाती है, छोटी दिखने लगती है। तो परीक्षित महाराज के जीवन में वैसे ही था। परीक्षित महाराज उनके जीवन में समस्या आए तो उन्होंने कुछ किया नहीं, उन्होंने सरल उपाय ढूंढा। क्या सरल उपाय है? उन्होंने भगवान के जो भक्त हैं शुकदेव गोस्वामी उनके चरणों का आश्रय प्रदान किया। काय वाक्य मने करो वैष्णव संतोष। उन्होंने क्या किया? प्रयास किया अपने मन वाणी शरीर आदि से कि किस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी प्रसन्न हो जाए। और परीक्षित महाराज भयभीत नहीं थे मृत्यु से, बल्कि इस संसार में हर एक व्यक्ति मृत्यु से हमेशा भयभीत रहता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो मृत्यु से डरा हुआ नहीं है, भयभीत नहीं है। हर एक व्यक्ति भयभीत है। इवन शास्त्रों में हम बड़े बड़े शक्तिशाली राजाओं को देखते हैं, महान महान आसुरों को भी देखते हैं जो सारे देवताओं पर वश करते हैं, कंट्रोल करते हैं, लेकिन फिर भी वो किससे भयभीत है? मृत्यु से भयभीत है। हिरण्यकश्यप को हम देखते हैं, ब्रह्मा जी या बाकी सारे जो देवतागण हैं वो हिरण्यकश्यप की निरंतर स्तुति किया करते थे, उनका गुणगान करते थे उनके दरबार में जाकर सारे देवतागण। और उनकी हिरण्यकश्यप अपनी भ्रुकुटी भी हिलाता है तो उससे सारे देवता कांपने लगते हैं भय के मारे। लेकिन ऐसा जो हिरण्यकश्यप है वो किससे भयभीत होता है? मृत्यु से भयभीत होता है। कंस को हम देखते हैं, कितना बलशाली राजा, कंस भी आकाशवाणी सुना किसी से, बस वो सही है या गलत है पता नहीं किसने की, लेकिन उससे उसको कितना अधिक भय हुआ था। तो लेकिन ऐसा भय परीक्षित महाराज को नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि परीक्षित महाराज का जो चित्त है, उनका मन हृदय धृत चित्त ईशे, भगवान में लगा हुआ था। क्योंकि भगवान को क्या कहा जाता है? आपन्नः संश्रुतिम घोरा यन्नाम विवशो गृणम तत् सद्य विमुचेति यद् विभेति स्वयं भयम्। आपन्नः संश्रुतिम घोराम, ये संश्रुति, ये जो भौतिक जगत है, ये बहुत अधिक भयावह है, जन्म मृत्यु का ये जो सागर है। लेकिन यदि ऐसे भयावह जगत में भी कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, यन्नाम विवशो गृणन, भगवान के नाम का गुणगान करता है, भगवत नाम लेता है, तो क्या हो जाता है? यद विभेति स्वयं भयम्। जो भय है वो भगवान नाम का उच्चारण करने से वो कांपने लगता है। तो ऐसे परीक्षित महाराज भयभीत नहीं थे, बल्कि उनका मृत्यु उनको पता था 7 दिन में मुझे मरना है। और वो भी ऐसे वैसे नहीं, तक्षक नाम के सर्प के द्वारा काटा जाने वाले थे, जो उड़ने वाला सर्प है जिसके सर्प से आग निकलती है, ऐसा भयावह सर्प। बल्कि हम सांप का नाम लेते हैं तभी भी हमें भय हो जाता है। तो लेकिन परीक्षित महाराज निर्भय थे। भज हुरे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे, क्योंकि उनका मन वास्तव में भगवान के चरण कमलों में दृढ़ हो गया था, और जिसके कारण से वो अभय निर्भय हो गए थे, भय से रहित थे। तो इसी कारण से शास्त्र वर्णन करते हैं कि
कि ऐसे परीक्षित महाराज के जीवन में ये जब घटना बीती तो परीक्षित महाराज भय से भयभीत नहीं हुए। उन्होंने क्या किया, तुरंत भय भय होने का कारण ही क्या है व्यक्ति को, एकमेव कारण है प्रहलाद महाराज को जब हिरण्यकशिपु ने पूछा तो प्रहलाद महाराज ने कहा, तत् साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम असद ग्रहात। उन्होंने कहा कि जो शरीर धारण करने वाले जो जीव है सदा समुद्विग्न, हमेशा उद्विग्न रहते हैं, परेशान रहते हैं, भयभीत रहते हैं, विचलित हो जाते हैं। क्यों? धियाम असत ग्रहात, कि उनकी जो बुद्धि है वो असत चीज में लगी हुई है। तो असत चीज में जब हमारा कृष्ण के अलावा बाकी चीजों में हमारा मन लगता है तो निश्चित रूप से वो सारी चीजें हमारे भय के कारण बनती हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं रूपे जरायाम भयम, जो बहुत सौंदर्यवान है या सौंदर्यवती है उनको हमेशा भय लगा रहता है। किस चीज का? बुढ़ापे का। आजकल हम देखते हैं फिल्म स्टार आदि, एक अमेरिकन फिल्म स्टार थी जिसको थोड़ा सा एक बाल उसका पक गया, सफेद हो गया, वो कभी बाहर ही नहीं निकली। या फिर इंडियन सिनेमाज में भी देखा जाता है कि थोड़ा भी बुढ़ापे का चिन्ह प्रकट होने लगते हैं तो वो लोग अपने आप को अलग रखते हैं या फिर प्रयास करते हैं, प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, जो चेहरे पर जो बुढ़ापे में सारा जो स्किन है इकट्ठा हो जाता है तो उसको खींचा जाता है, खींच के यहाँ उसको फैलाया जाता है। तो उससे क्या होता है, या तो फिर प्लास्टिक सर्जरी करते हैं उसके ऊपर, कवरिंग करते हैं जिससे पता नहीं चलता। 50 साल की होगी तो आपको लगेगा कि 30 साल की है वो युवती। तो इस प्रकार से हर एक जो सौंदर्यवान है वो भयभीत होता है। रूपे जरायाम भयम धने रिपु भयम, जिनके पास धन है वो हमेशा भयभीत रहते हैं, किन से? चोरों से। उसी प्रकार से शास्त्रे वादी भयम, जो शास्त्रों के ज्ञाता है, पंडित है, तो वो भी भयभीत रहते हैं, अरे मुझसे दूसरा कोई बड़ा पंडित नहीं होना चाहिए, डरते हैं। तो इस प्रकार से इस संसार में हर समय भय है। क्यों भय है? क्योंकि वो आत्म तत्व को नहीं जानते। इसलिए श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंध में वर्णन आता है, अपश्यताम आत्म तत्वम ग्रहेषु ग्रहमेदिनाम, क्योंकि उनकी बुद्धि भगवान के अलावा बाकी भौतिक कार्यों में लगी हुई है। ग्रहेषु ग्रहमेदिनाम, तो इसी कारण से अपश्यताम आत्म तत्व, वो परम तत्व आत्म तत्व भगवत तत्व को जानते नहीं है। और वो क्या हो गए हैं? देहापत्य कलत्रादिषु असत सैनेषु, उन्होंने क्या किया है, इस भय से मुक्त होने के लिए ऐसे सैनिकों का आश्रय ले रखा है। कौन से सैनिक? जो खुद ही मरने वाले हैं। देह आपत्य कलत्र आदिशु, पहले तो देह, फिर आपत्य जो बच्चे आदि है, कलत्र मीन्स पत्नी आदि है, इनका आश्रय लिया है। व्यक्ति को गर्व होता है कि यही लोग मेरे काम में आने वाले हैं, है ना। हम क्यों चाहते हैं पुत्र परिवार आदि, पत्नी सास समान, क्योंकि हम भयभीत हैं। व्यक्ति सोचता है कि आगे जाकर मेरा क्या होगा, मेरा ध्यान कौन रखेगा बुढ़ापे में, है ना। तो इसलिए हम सैनिकों को तैयार करते हैं। ये सारे सैनिक क्या होंगे, अभी से सैनिकों को खिलाते पिलाते नहलाते ध्यान देते हट्टे कट्टे करते, बड़े होके ये सैनिक मेरे ध्यान रखेंगे। लेकिन बड़े होकर वो सैनिक क्या करते हैं, ओल्ड हाउस जो इसमें भेज देते हैं, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं वो सैनिक। तो ऐसी स्थिति है। तो ये असत सैनिक है, बल्कि ये जो सैनिक जिनको हम तैयार कर रहे हैं वो अपनी खुद ही रक्षा नहीं कर सकते मृत्यु से, तो वह हमारी क्या रक्षा करेंगे। एक एक व्यक्ति था, एक युवक था जिसका शादी हुआ और उसके पिताजी थे जो हमेशा बहुत खांसते रहते थे, खांसी बहुत करते थे, बूढ़े हो गए थे और हाथ हमेशा कांपने लगता था उनका, खाने के लिए भी बैठेंगे तो सारे बर्तनों का आवाज हो जाता था चम्मच से, और पूरी रात खांसी करते जा रहते हैं। तो उनका नया मैरिज हुआ था, शादी हुआ था, तो पत्नी बड़ी डिस्टर्ब हो गई। उन्होंने, ये क्या है, आपके पिता की कहा व्यवस्था करो आप, नहीं तो मैं नहीं रहूंगी आपके यहाँ। तो अभी इस बेचारे को तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो इसने कहा कल मैं व्यवस्था करता हूँ। तो पिताजी का एक छोटा सा बैग भरा, कहा पिताजी चलिए आपको ले चलता हूं मैं, हम चलते हैं। तो वो अपने कार में पिताजी को बिठाता है और तेजी से गाड़ी चलाते चलाते पूरा जंगल बहुत दूर चला जाता है और पिताजी को कहता है आप उतर जाइए यहाँ। तो पिताजी उतरते हैं, बल्कि उनको रोना आना चाहिए था, लेकिन वो क्या करने लगे, जोर जोर से हंसने लगे और वो कहने लगे, तो बेटा तो बड़ा ये हो गया कि क्यों आप क्यों हंस रहे हो, मैं तो आपको यहाँ छोड़ने आया हूं परमानेंटली। तो कहता है कि मैंने भी अपने पिताजी के साथ 40 साल पहले इधर ही छोड़ा था। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो है ये सैनिक है, जिनको हम, जिन पर हम भरोसा या विश्वास करते हैं, वो सैनिक वास्तव में क्या करने वाले हैं, हमारी रक्षा नहीं करने वाले। तो उस बेटे ने फिर से अपने पिताजी को बिठाया, वापस घर ले आए। तो कहने का तात्पर्य है कि हमने ऐसे सैनिकों को तैयार कर रहे हैं जो सैनिक अपनी रक्षा नहीं कर सकते। तो इसलिए गजेंद्र के उदाहरण से हम देखते हैं, गज इंद्र, इंद्र का मतलब है राजा, गज मीन्स हाथी। तो ये जो गजेंद्र था पूरा जंगल का राजा था, या हाथियों का राजा। युवा श्रीमद भागवतम में वर्णन आता है कि ये जो गजेंद्र जब जोर से चलता भी था जहां, तो सिंह शेर आदि डर के भागते थे, और जोर से जब वो आवाज करता था तो कई किलोमीटर शेर बड़े सारे प्राणी दिखते नहीं थे, इतना पावरफुल था गजेंद्र। तो ऐसा गजेंद्र जब अपने पूरे परिवार के साथ जाता है, क्या करने के लिए, जल क्रीड़ा करने के लिए। जैसे लोग भी आजकल फैमिली टूर बनाते हैं ना, ऊटी शिमला इधर उधर जाते हैं, क्या करते, जाके कहा नदी में स्नान करते हैं, समंदर में स्नान करते हैं, कुछ गोलगप्पे वगैरह खाते हैं और वापस आ जाते हैं। तो ये भी वैसे आपने पूरे परिवार को ले गया था, कितनी पत्नियां थी, कितने बच्चे थे, पूरा झुंड था हाथियों का, ये राजा है। ऐसा गजेंद्र जब सरोवर में गया और स्नान करने लगा, मस्ती करने लगा, जल इधर से उधर उछालने लगा, सारे सब मग्न थे, उसी क्षण क्या हो जाता है, क्योंकि काल किसी को छोड़ता नहीं है, हम बाकी सब चंगुल से छूट जाएंगे, कुछ ना कुछ बहाना बनाकर, कुछ ना कुछ योजना बनाकर, लेकिन जो काल है वो किसी को नहीं छोड़ता, वो क्या करता है, पकड़ता है, दबोच लेता है। जैसे चूहा बैठा है, बिल्ली आके उसको दबोच लेती है, वैसे ही काल हम हरेक को दबोचता है, पकड़ता है। तो जब ये मस्ती कर ही रहा था, उसी समय जो मगरमच्छ है वो उनको पकड़ लेता है, पानी में पकड़ता है। तो ये तो इसको लगा कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, सामर्थ्यवान हूँ, मेरे पास इतना सारे मेरे सैनिक है, पूरा प्रयास कर रहा था, नहीं निकल रहा था, और वो चिल्ला भी रहा था, अपने ये जो सैनिक है, पत्नी थे, बच्चे थे, संबंधी गण थे, उनसे सहायता मांग रहा था, लेकिन किसी में भी सामर्थ्य नहीं था उनकी रक्षा करने का। फिर उस समय हम सुनते हैं कि लगभग 1000 साल, कितने साल उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जो मगरमच्छ है वो खींचते जा रहा था। इससे हम क्या सीखते हैं कि वास्तव में व्यक्ति को किसी का आश्रय लेना है, किसी के संरक्षण में रहना है, तो वो कौन है, भगवान है। उनके अलावा इस जगत में कोई भी हमारी रक्षा नहीं कर सकता। जैसे हम देखते हैं कि कृष्ण जब महाभारत के युद्ध के समय वापस जा रहे थे द्वारका, तो उस समय केवल महाभारत में 5 पांडव बचे थे। क्यों? क्योंकि कुंती महारानी को भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध से पहले ये वचन दिया था, आपके जो पुत्र है ये सुरक्षित वापस आ जाएंगे। इसलिए भगवान के कई सारे गुण हैं, उसमें एक गुण है उनका सत्यता। भगवान वचन के पक्के होते हैं जो अपने भक्तों को देते हैं। तो पांच ही पांडव बचे थे, सबका तो संहार हो गया था, और ये जो अश्वत्थामा है वो क्या करता है, उनका जो आखिरी वंशज है, आखिरी जो संतान थी उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज, उनको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र को भेजता है। ब्रह्मास्त्र वो चीज है, अचूक है, एक बार जाए तो उसको मार के ही वापस आती है, रोक नहीं पाते। और उसी व्यक्ति को मारेगा वो जो ब्रह्मास्त्र है, बाकियों को कुछ करेगा नहीं। तो उत्तरा जब अपने महल में थी, उसने देखा कृष्ण जा रहे हैं द्वारका के लिए, रथ पर सवार हो रहे हैं। उसी समय उसको अनुभव हुआ कि ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है और मेरे गर्भ में मेरे जो बच्चा है उसको मारने वाला है। तो उत्तरा अपने महल से दौड़ने लगती है। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते नाहम तदहम पश्यत यत्र मृत्यु परस्परम। कि हे योगी, हाँ परम योगी है कृष्ण, आप तो महायोगी हैं, और मैं देख रही हूं कि इस भयावह स्थिति से मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है मृत्यु की स्थिति में। बल्कि उसने देखा पांडव वहां खड़े थे, पांच पांडव, उसने किसी को पुकारा नहीं, इतने बलशाली थे पांडव, लेकिन फिर भी उसने किसको पुकारा, कृष्ण को, क्योंकि उनके अलावा कोई भी हमें रक्षा नहीं प्रदान कर सकता। इसी कारण से द्रौपदी के जीवन में भी हम देखते हैं जब उसका उसका वस्त्र हरण हो रहा था, दुशासन सारे पूर्ण भरी हुई सभा में उसको नग्न कर रहा था, उसकी साड़ी खींच रहा था, तो ऐसी द्रौपदी पहले तो पूरा प्रयास कर रही थी अपना बचाव करने के लिए, अपने दांत को लगा रही थी, हाथ को लगा रही थी, साड़ी को पकड़ रही थी, पूरा उसने प्रयास किया। लेकिन देखा, और उससे पहले वो तो सबके सामने रो पड़ी, जाके सबके सामने निवेदन किया, भीष्म है या फिर द्रोणाचार्य आदि है, धृतराष्ट्र है, पांडवाज है जो उसके पति थे, लेकिन किसी में भी सामर्थ्य नहीं था। और जब उसका वस्त्र हरण हो रहा था, उसी समय वो देखती है कि इस भयावह संकट से मुझे कोई और नहीं बचा सकता, और वो कौन बचा सकता है, कृष्ण है। इसलिए हे कृष्ण, हे यादव, हाँ इस प्रकार से उनका उच्चारण कर रहे थे। बल्कि कृष्ण द्वारका में थे, द्वारका में जब कृष्ण थे और ये चिल्ला रही है हे कृष्ण हे यादव, और रुक्मिणी भगवान को प्रसाद सेवा सर्व कर रही है, भोगा भोगा सर्व कर रही है। भगवान तो प्रसाद नहीं खाते, भगवान तो भक्त का उच्चिष्ट महा महा प्रसाद खाते होंगे, है कि नहीं, खाते कि नहीं। भगवान जब ग्वाल बालों के संग में जाते हैं ब्रज में गोचारण करने के लिए, तो एक दूसरे के हाथ से खींच के खाते हैं, तो एक तो भोगा खाते हैं और दूसरा प्रसाद नहीं खाते, महा महा खाते हैं, भक्त का उच्चिष्ट खाते हैं। तो भगवान जब भोजन कर ही रहे थे, रुक्मिणी ने कहा क्या इतने चिल्ला रहे आपके जो भक्त हैं द्रौपदी, आप क्यों नहीं जा रहे हो, कहते वो ना अभी अब खुद प्रयास कर रही है, पूर्ण रूप में अभी शरणागत नहीं हुई है, अभी उसको वैसे ही रहने दो। क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं, उन्होंने कहा मैंने ये बोला है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि हम, जो जितनी मात्रा में मेरी शरण हो शरण ग्रहण करेगा उतनी मात्रा से मैं उससे आदान प्रदान करूंगा। तो भगवान ने जब देखा, द्रौपदी ने सोचा कि अभी मैं खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकती, पूर्ण रूपेण भगवान पर निर्भर हो जाती है। अब दोनों हाथ ऊपर करते हुए कहती है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ने देखा अरे ये तो पूर्ण रूपेण शरणागत है। भगवान उठ के बिना हाथ धोए भागने लगे, साड़ी लेकर, अब देखो खाली नहीं, साड़ी लेकर भागे, और इतना साड़ी उनको प्रदान किया कि दुशासन साड़ी का जो ढेर बन गया पहाड़, उसी में गिर गया थक के खींच खींच के। तो वही है कृष्ण का वास्तव में शरणागति लेनी चाहिए, उन पर ही निर्भर होना चाहिए। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, ये भक्त शरणागत भक्त का ये लक्षण है। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारे, हे कृष्ण अभी आप मुझे मारे या मेरी रक्षा करें, मैं तो आपका नित्य तुया प्रति, आपके प्रति शरणागत हूं, आपका मैं क्या हूं, दास हूं। तो इस प्रकार से वास्तव में व्यक्ति भयभीत है। कौन व्यक्ति भयभीत रहता है इस संसार में? जो व्यक्ति आत्म तत्व को नहीं जानता, परम भगवान के बारे में जानता नहीं है। क्यों क्यों वो भयभीत है? क्योंकि नमे विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, वो अपने असली स्वार्थ को नहीं जानता, वो केवल ये शरीर की संतुष्टि करने में लगा रहता है, अपने शरीर तक ही वो सीमित है। निद्रा वशे गेलोरे राते दिवस शरीर साजे, नींद नींद में गवाता है रात्रि और दिन में इस शरीर को सजाने में लगाता है, और वो भूल जाता है कमल दल जल जीवन टलमल, कि ये जो जीवन मेरा जो जीवन है ये तो कमल के पुष्प के ऊपर या कमल के पत्ते के ऊपर तो जल का बिंदु है, और वो हमेशा टलमल करता रहता है, कभी भी वो गिर सकता है नीचे। उसी प्रकार से हमारा जो जीवन है, कभी भी हम इस शरीर को छोड़ सकते हैं। तो भगवान कितने अधिक कृपा करते हैं, तो भगवान के भक्त कभी भयभीत नहीं होते इस जगत में। क्यों? जैसे श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि जब चित्रकेतु महाराज चित्रकेतु पुष्पक विमान में बैठ के जा रहे थे बहुत सारी रानियों के संग में, तो जाते जाते उन्होंने नीचे देखा, जैसे विमान से जाते हो तो नीचे देखने का आदत रहता है क्या है नीचे, और वैसे देखा जाए विमान से सारी चीजें इतनी छोटी छोटी दिखती है, गाड़ियां कारें, जैसे कि माचिस। प्रभुपाद जब विमान में पहली बार बैठे थे तो प्रभुपाद ने कहा कि नीचे सारी चीजें मैच बॉक्स के जैसे दिख रही थी, माचिस का बॉक्स है। और वैसे लगता है ऊपर से देखेंगे तो लगेगा अरे कितना निकृष्ट है ये जीवन, ऐसे लगता है इतनी इतनी इमारतें, छोटी छोटी गाड़ियां जैसे चींटियां घूम रही है रोड में, देवतागण ऐसे देखते होंगे। लेकिन यहाँ हम अपने आप को साम्राज्य इतना बड़ा राजा समझते हैं, बड़ा बड़ा समझते हैं। तो जब चित्रकेतु महाराज जा रहे थे तो उन्होंने नीचे देखा, क्या देखा कि एक बहुत बड़ा प्रवचन हो रहा है, बहुत सारे साधु महात्माएं बैठे हैं और उनको प्रवचन देने के लिए शिवजी एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, और वो अकेले नहीं बैठे बल्कि सारे साधु संत महात्माओं के सामने वो प्रवचन देते हुए व्यास आसन में उन्होंने अपने गोद में पार्वती को ले लिया है और उसका ऐसे आलिंगन करके वो बैठे। अभी चित्रकेतु महाराज हंस पड़े, उन्होंने कहा ये क्या है, सारे साधु महात्मा है और इसी समय पत्नी का आलिंगन करके प्रवचन देना एक उचित है, तो उनको हंसी आ गई। इस प्रकार से तो पार्वती शिव जी तो समझ गए, वो जानते थे कि ये महान भक्त है चित्रकेतु। तो पार्वती को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने कहा ये क्या किया, मेरे पति को इस प्रकार से आप सोचते हो? तो उन्होंने शाप दिया उनको कि आपको क्या हो, आप क्या आसुरी होने में जाओगे, आसुर बनोगे। तो आगे चल के चित्र के तो वृत्रासुर बनते हैं। तो लेकिन उनको ये शाप दिया तो चित्र के तो भयभीत नहीं हुए। चित्र के तो महाराज आए और पार्वती और शिवजी को प्रणाम करके कहा आपकी तो मेरे ऊपर कृपा हो गई है, क्योंकि भक्त के जीवन में कोई भी संकट आता है तो भक्त क्या करता है, उसको वरदान के रूप में स्वीकार करता है। इसलिए ब्रह्मा कहते तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृद्वार वपुर भी विदधान नमस्ते जीवे दाय भाग। वो कहते हैं कि ये भगवान की अनुकंपाएं हैं मेरे ऊपर, क्योंकि भक्त के जीवन में कष्ट आता है तो वो कहते हैं भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई मेरे ऊपर, तो बहुत बड़ा कष्ट का पहाड़ बीतने वाला था, आने वाला था, लेकिन भगवान ने क्या किया है, थोड़ा ही दिया है। जैसे हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में पढ़ते हैं नारद जो दासी पुत्र थे, उनकी अकेली माँ थी जो जाकर कहा सेवा कार्य करती थी और उसी से गुजारा होता था। तो ऐसे दासी पुत्र नारद ने देखा कि एक दिन उनकी माँ को सर्प ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। तो नारद छोटे से बच्चे थे, उन्होंने कहा अनुग्रह मन्यमानम, उन्होंने कहा अरे भगवान ने अनुग्रह कर दिया मेरे ऊपर, अब मैं अकेला हूं। तो वो फिर ये जैसे पता चला मेरी माँ की मृत्यु हो गई है, तो ऐसे नारद जो छोटे से बच्चे हैं वो सारे वनों में जंगलों में गांवों में खेतों में भ्रमण करने लगे, और फाइनली भगवान का स्मरण करते हुए उन्होंने वो शरीर छोड़ा। तो भगवान की अनुकंपा को भक्त हमेशा देखता है, क्यों ये कष्ट आते हैं तो भगवान अपने भक्तों को ये देते हैं ताकि भक्तों को और वो नजदीक ले आते हैं। प्रभुपाद के जीवन में देखते हैं, प्रभुपाद ने जब उनके गुरु महाराज ने उनको राधा कुंड में कहा था कि आपको जब धन मिलेगा तो आप उससे ग्रंथ छापो और उसका वितरण करो, तो प्रभुपाद ने सोचा पहले धन कमाता हूं। प्रभुपाद कहते कि मैं सोच रहा था बिरला और उन टाटा के समान मुझे रिच होना है, धनवान होना है। तो प्रभुपाद ने अपना एक बहुत बड़ा फैक्ट्री बनाया लखनऊ में, कई लोग काम किया करते थे वहां, लेकिन फिर देखा कुछ दिनों में वो फैक्ट्री पूरा लोगों ने लॉस में चला गया, चोरियां की वगैरह वगैरह, तो प्रभुपाद बिल्कुल कर्ज से कर्जा इतना हो गया था। तो प्रभुपाद को श्लोक याद आया भागवतम का, हरिष्ये तद् धनं क्षणे, वो कहते उनको श्लोक याद आया कि भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसका धन वो छीन लेते हैं। क्यों धन छीन लेते हैं? क्योंकि उसकी आसक्ति बहुत सारे स्थानों में है, वो सारे आसक्ति को कम कर देते हैं। क्योंकि आपके पास धन है तब तक आपके पास सब लोग आपसे आदर रखेंगे, सब कुछ रखेंगे, संबंध रखेंगे, तो धन को हटा दो बाकी चीजें अपने आप कम होना हट जाती है आपके जीवन से। तो इसी प्रकार से जो प्रभुपाद हैं वो भी देखते हैं कि वास्तव में ये भगवान की कृपा है। हाँ, जैसे एक बार द्वारका से अर्जुन और कृष्ण घूम रहे थे, घूमते घूमते वो एक व्यक्ति के घर में घुस रहे थे, दरवाजा नॉक कर रहे थे, हरि बोल दरवाजा खोलो, तो वो व्यक्ति एक साहूकार लालाजी अंदर पैसे गिन रहा था, तो दरवाजा नहीं खुल रहा था, भगवान और अर्जुन बाहर खड़े हैं, कह रहे वो अपना मस्त है। तो भगवान ने कहा तुम्हारा धन है ना चौपट हो जाए और बढ़ जाए, और फिर वहां से ये लोग गए दूसरे भक्त के घर, दरवाजा खोला तो आया छोटा सा सिंपल भक्त था, गरीब था बेचारा, उन्होंने भगवान और अर्जुन को बहुत अच्छी तरह से उनका स्वागत किया, बिठाया और उनको प्रसाद बनाया खिलाया, और उसके पास एक ही गाय थी। तो भगवान बाहर निकले और कहा कि आपकी गाय भी मर जाए, तो अर्जुन बड़े आगे, क्या है भगवान वहां तो आपका अभक्त था जो आपको कोई आदर नहीं सम्मान नहीं, आपको घर में घुसने भी नहीं दिया, हाँ उसको तो आपने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया कि आपका धन में बढ़ोतरी हो जाए, और ये जो आपकी इतना सेवा किया है सब कुछ कर रहा है, उस बेचारे के पास एक गाय थी उसी को भी आपने कहा कि वो गाय भी मर जाए, तो भगवान ने कहा कि वो उसमें भी आसक्त है, हाँ वो गाय भी चले जाए तो पूर्ण रूपेण वो मुझ में आसक्त हो जाएगा और मेरे बहुत नजदीक आएगा। तो इस प्रकार से भक्त लोग देखते हैं किसी भी समस्या को, किसी भी संकट को, भगवान की अनुकंपा, भगवान की कृपा। हाँ, तो इसीलिए भगवान की कृपा को देखने के लिए क्या करना चाहिए, भगवान के भक्तों का आश्रय लेना चाहिए। तो भय तो चित्रकेतु महाराज जब चले गए तो पार्वती को शिवजी कहते हैं नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शिना, कि जो ये भगवान के भक्त है नारायण परायण, नारायण के प्रति परायण है, आसक्त है, ऐसे जो भक्त है वो कुतश्चन बिभ्यति, कभी भी भयभीत नहीं होते, क्योंकि उन्होंने शाप क्या दिया था, असुर बन जाओ, असुरी योनि में चले जाओ, बल्कि कितना वो गिड़गिड़ाते, नहीं नहीं प्लीज क्यों आसुर बना रहे हो मुझे, आप मुझे क्षमा कर दो, ये करो, नहीं स्वीकार करते हैं भगवान की कृपा, भगवान का हाथ, भगवान की योजना को देखते हुए उसको स्वीकार करते हैं। और इस चीज को देखकर इस पार्वती को भी लज्जित हो जाती है कि अरे इनको मैंने इतना शाप आदि दिया फिर भी भय का कोई नामो निशानी के चेहरे पर नहीं है, और उसको बल्कि जैसे कि कोई महान वर दिया है, इस भावना से वो स्वीकार कर रहे हैं। तो ये देखकर शिवजी ने कहा तुम नहीं जानती, नारायण परायण जो भगवान के भक्त है उनका गुण उनका स्वभाव इतना दिव्य है कि कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शना, उनको चाहे स्वर्ग है नरक है सारे एक समान है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के चरणों में उनका जो प्रगाढ़ आसक्ति है इसलिए भयभीत नहीं होते। इसलिए प्रहलाद महाराज वर्णन करते हैं नहीं वो द्विजय पर दुरतया वैतरण्या, वो कहते हैं नरसिम्हदेव को हे नरसिम्हदेव मुझे इस जगत से कोई भय नहीं है। वैतरणी क्योंकि वैतरणी नदी से हर कोई भयभीत रहता है, नहीं वो द्विजय पर दुरतया वैतरण्या तद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्तः, उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल भयभीत नहीं हूं। क्यों भयभीत नहीं हूं इस भौतिक जगत से? इसलिए भयभीत नहीं हूं क्यों? क्योंकि मेरा जो चित्त है तद्वीर्य गायन, आपका जो गौरवशाली गाथा है आपका गौरवशाली जो कथा है नाम है इनको गान करने में महामृत मग्न चित्ता, मेरा चित्त मग्न हो गया है। शोचे तथो विमुख चेतसा इंद्रियार्थान माया सुखाय भरम उद्वतो विमूढ़ान, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लोगों का चिंता है, ऐसे लोगों का ऐसे लोगों की चिंता करता हूं जिन्होंने क्या किया है इंद्रिय अर्थान, इंद्रियों को ही अपना इंद्रिय तृप्ति ही जिन्होंने लक्ष्य बनाया है, ऐसे मूढ़ लोगों की मूर्ख लोगों की मुझे चिंता है। तो ये भक्त का स्वभाव है, क्या स्वभाव है? पर दुखी दुखी, जो हमेशा दुख से दूसरों के दुख से दुखी होता है। लेकिन इस संसार में नहीं, इस भौतिक जगत के लोग दूसरों के दुख से सुखी हो जाते हैं। तो भक्त हमेशा भगवान के भगवान का आश्रय लेता है। किस प्रकार से आश्रय लेता है? एक तो भगवान के भक्तों का आश्रय लेता है, दूसरा भगवान का जो नाम रूप गुण लीला कथा आदि है इसका वो आश्रय लेता है। इसी कारण से इस संसार में रहकर भी वो कभी भयभीत नहीं होता। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज के जीवन से हम सीखते हैं कि इतनी बड़ी विपदा आने के बाद भी वो भयभीत नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभय चरणारविंद रे, उन्होंने जो भगवान के जो दो चरण है उनका उन्होंने प्रगढ़ता से दृढ़ता से उन्होंने आश्रय लिया है। इस प्रकार से हमें भी इन चीज से सीखना चाहिए कि जिस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी का आश्रय परीक्षित महाराज ने लिया, परीक्षित महाराज ने उनसे श्रवण करने की इच्छा को जागृत किया और सही रूप से उनको प्रश्न पूछे, तो प्रश्न पूछने के लिए भी हमें योग्य व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अप्रोच करना चाहिए। तत्वतः जो भगवत तत्वों को जानता हो ऐसे व्यक्ति के द्वारा हमें भगवत नाम रूप गुण लीला को समझना चाहिए, सीखना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। तो आज के श्लोक में कई सारे प्रश्न पूछे हैं कि इस जगत के लक्षणों का वर्णन कीजिए और ये जगत का आधार क्या है, किस चीज पर ये जगत टिका है और ये जगत कैसे उत्पन्न हुआ और ये किस प्रकार से स्थित है और इस जगत का नियंत्रण करता कौन है। तो वास्तव में ये प्रश्न कौन पूछ रहे हैं? नारद ब्रह्मा से पूछ रहे हैं। क्योंकि जैसे ही शुकदेव गोस्वामी को शुरुआत में प्रश्न पूछा कि सृष्टि का वर्णन कीजिए कैसे हुआ, तो उन्होंने पहले भगवान की प्रार्थना ही की बोलने से पहले, और फिर उस चौथे अध्याय के आखिरी श्लोक में कहा कि आपने जो प्रश्न पूछा है इसी प्रकार का प्रश्न नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा था और ब्रह्मा जी ने जो उत्तर दिया उसी को मैं क्या करने जा रहा हूं, रिपीट करने जा रहा हूं। इसी को ही परंपरा कहते हैं, उसी को ही आचार्य या गुरु कहते हैं। श्रील प्रभुपाद ने कहा मैंने कुछ नई चीजें इन्वेंट नहीं किए हैं, नई चीजें बनाई नहीं है, मैंने क्या किया है जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने कहा है या भगवान कृष्ण ने कहा है उसी को मैं यथारूप से बस दोहरा रहा हूं, यही मेरी योग्यता है। और वास्तव में एक भक्त को इसी प्रकार से स्वीकार करना चाहिए शास्त्रीय ज्ञान को। सरल क्या है, भक्तों के द्वारा हम श्रवण करते हैं, सीखते हैं, उसी चीज को हम रिपीट करें। प्रभुपाद ने कहा मैंने जो किया है उसी को आप लोग करो, तो वही कर रहे भक्तगण। प्रभुपाद ने जो किया प्रचार जिस प्रकार से किया उसी प्रकार से प्रचार आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, तो उससे देखा जा रहा है कि कितना प्रभाव हो रहा है, हमारे छोटे छोटे भक्त भी कितने लोगों को आकृष्ट कर रहे हैं, भक्त बना रहे हैं। तो इस प्रकार से नारद अपने पिता से ही प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इससे समझ सकते हैं कि एक बच्चे के लिए, एक पुत्र के लिए सबसे पहले गुरु कौन है, माता और पिता है। इसलिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है माता या पिता बनना और जिज्ञासा करना। इसलिए शास्त्र कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अभी आपके पास ये मनुष्य का देह आपको प्राप्त हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, जिज्ञासा करना चाहिए। कौन सी जिज्ञासा करनी चाहिए, जो जिज्ञासा सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से की थी, के आमे केने आमाय जारे था पत्र है, मैं कौन हूं, क्यों मुझे तीन प्रकार के दुख प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जिज्ञासा करना, प्रभुपाद कहते जो प्रश्न करता है वो ये इसका लक्षण है, बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। और जिज्ञासा के साथ हम सुनते हैं तो कृष्ण कथा का हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है और हम शुद्ध होने लगते हैं। तो इस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के प्रश्न का उत्तर देना शुरू कर रहे हैं या राजा और प्रश्नों को पूछ रहे हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, भद्राश्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, निसाय गौर प्रेमानंदे।